नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, एक युवक को शराब की लत लग गई थी। बहुत कोशिश की लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था। उसके घर वाले भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि चलो इसकी शादी कर देते हैं, शायद शादी होने के बाद ये इस बुरी आदत से मुक्त हो जाएगा। शादी के कुछ समय तक तो वो ठीक रहा, लेकिन फिर से अपनी लत की ओर वापस लौट गया। अब उसकी पत्नी भी परेशान रहा करती थी। उस नगर में एक महात्मा जी आए, बड़े ही पहुंचे हुए थे, सिद्ध महात्मा थे। लोगों ने सुन रखा था कि वो जो चाहे वो छुड़वा देते हैं। अब इनकी पत्नी भी अपने पति को लेकर पहुंची और कहा कि मेरे पति देव को ऐसी बुरी आदत लग गई है। महात्मा जी ने कहा कि कल इसको लेकर के आओ। अब दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो देखा कि वो महात्मा जी एक पेड़ को पकड़ के खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, महात्मा जी प्रणाम, बताइए कुछ उपाय। बोले, नहीं तुम कल आना, आज ये इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। दूसरे दिन आए तो फिर से उस पेड़ को पकड़े हुए महात्मा जी खड़े हुए थे। युवक ने पूछा, महात्मा जी आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। महात्मा जी ने कहा कि क्या करूं, ये पेड़ ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। युवक ने कहा हंसते हुए कि महात्मा जी ये कैसी बात कर रहे हैं, आपने वास्तव में पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले तब से मैं यही प्रयास कर रहा हूं तुमको समझाने का कि तुमने अपनी शराब की आदत को पकड़ रखा है, उस आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तुम मालिक हो, तुम जीवंत हो, सजीव हो, तुम चाहो तो इस चीज को छोड़ सकते हो, बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सचमुच मित्रों, ये कितनी सुंदर बात है ना। हम कहते हैं कि ये आदत मेरी है और इस आदत को मैंने क्या पकड़ा है, उसने मुझे पकड़ रखा है और जा नहीं रही है। लेकिन यदि इच्छा शक्ति हो तो सचमुच किसी भी आदत को छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। आवश्यकता इस चीज की है कि हम उसके लिए कटिबद्ध हो जाएं कि जो अच्छी आदतें हैं वो मुझे अपने जीवन में लेके आगे चलना है, बुरी आदतों को छोड़ते चलना है, ये मेरे अपने हाथ में है। ये ना कहें तोते की तरह कि हम नल पे वो बैठा हुआ था और कह रहा था कि तोता राम तू नल पे मत बैठना, और वास्तव में नल पे बैठ के ही वो ये कह रहा था। कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो मित्रों, अच्छाइयों की ओर बढ़ें, बुराइयों को छोड़ते चलें, अच्छी आदतों से ही हम एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय दाता जी का। दाता जी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स।
वैसे दाता जी, ये आदतों की जो बात है, व्यक्ति आदतों के साथ जीने लगता है और कई बार उसे अच्छी और बुरी चीजों का भेद भी करना नहीं आता, और यदि भेद कर भी लेता है तो अपनी आदतों को छोड़ने में खुद को लाचार महसूस करता है।
आजकल युवकों में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है
जी।
और इसका इफेक्ट आ रहा है उनकी पढ़ाई पर या उनके ग्रस्त जीवन पर। परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मनुष्य की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। सभी युवकों को ये ज्ञात रहे कि किसी भी तरह के नशे से ब्रेन की शक्ति कमजोर पड़ती है। ब्रेन वीक होगा, पढ़ाई के फील्ड में है तो वो बिल्कुल वीक होते जाएंगे। इसलिए इच्छा करनी चाहिए कि हमें इससे मुक्त होना है। और हम तो सिखाते ही हैं कि तुम देवकुल की महान आत्मा हो, अपने उस स्वरूप को याद करो तो ये सब बुराइयां छूट जाएंगी। देखिए, आप इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे। इच्छा तो बहुतों को होती है, लेकिन इच्छा में शक्ति होना बहुत आवश्यक है। उनकी इच्छा में शक्ति नहीं होती क्योंकि व्यसनों ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया होता है। ये शक्ति कहाँ से आएगी? सुप्रीम सत्ता से, जो परम सत्ता है, जो सर्वशक्तिवान है। उससे जब तक हमने कनेक्शन नहीं जोड़ा तो इन विकारों को, इन व्यसनों को, इन बुरे संस्कारों को छोड़ने की शक्ति नहीं आती। इसलिए मैं युवकों को सचेत करना चाहता हूं, पहले तो वो इस लत से बचे ही। उनके फ्रेंड्स, उनके और कोई यदि इस बुरी आदत के अधीन हो चुके हैं और ये उनकी दशा और दिशा को देखते भी होंगे कि शराबी है, पड़ा है सड़क पे ऐसे ही, लोग थू थू करते हुए जा रहे हैं, कैसा आदमी है, खाने को अन्न नहीं और शराब पी के पड़ा है, कपड़े फटे। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं आदिवासी लोग कपड़े फटे हुए हैं, धोती फटी हुई है, लेकिन शराब पी देखिए पड़े हैं सड़क के किनारे। तो कैसी दुर्दशा ये सबको दिखाई देती है। तो सबको इन चीजों से बचना चाहिए और हमारा ईश्वरीय ज्ञान, हमारा राजयोग तो इससे फटाफट मुक्त कर देता है।
बिल्कुल। चलिए, तो मतलब राजयोग की ओर बढ़े हैं तो बहुत अच्छी तरह से इन आदतों से भी मुक्त हो सकते हैं। दादा जी, कई बार व्यक्ति इन आदतों को स्वीकार ही कर लेता है, मान ही लेता है कि अब ये चीजें मुझसे जाएंगी नहीं, ये वाली स्थिति शायद बहुत ज्यादा दयनीय है कि व्यक्ति स्वीकार ही कर ले कि अब ये आदत ताउम्र मेरे साथ चलती रहेगी।
इतना ही नहीं, कई लोग तो इससे भी आगे बढ़कर हैं
जी,
कि इसकी बहुत जरूरत है समाज में। अगर तुम्हें सभ्य व्यक्ति कहलाना है तो खाओ और पियो, लेकिन क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, सभ्यता किसे कहा जाता है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं। कई धनवान लोग या अच्छे परिवारों में जन्मे लोग इसको रॉयल्टी समझते हैं, जबकि ये रॉयल्टी नहीं, ये आसुरी संस्कार है। भगवान के शब्दों में तो ये आसुरी संपदा के संस्कार हैं, अच्छे लोगों के संस्कार ये नहीं है। पैसे वाले हैं तो पैसे का सदुपयोग अच्छे कार्यों में भी तो किया जा सकता है। मेरे पास बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, मैं उन्हें कहा करता हूँ चार गरीब बच्चों को पढ़ाओ जरा। कुछ ऐसे गरीब होशियार बच्चे होते हैं जो IIT में जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको पढ़ाओ आप। शराब में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसको पाप कहा जाएगा। और पुण्य यह है कि किसी गरीब की, किसी स्टूडेंट की, किसी बीमार व्यक्ति की मदद कर दी जाए। तो एक तो ये बुरी चीज के मनुष्य ये सोच ले कि ये बहुत जरूरी है, ये रॉयल्टी है, ये हमारी पर्सनैलिटी है। दूसरी चीज कि इसके साथ ही जीना है, मेरी ये आदत है। देखिए शिव बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हमें ये बहुत अच्छी बात सिखाई है कि जिस चीज को तुम मेरी समझते हो तुम्हें पकड़े रखेगी, तुम भी उसे पकड़े रखोगे। अब तुमने मान लिया भाई शराब पीना मेरी आदत है तो पकड़े हुए हैं। अब तुम ये मान लो कि नहीं, मेरी आदत तो पवित्र है, मेरी आदत तो निर्मल है, मैं तो देवकुल की आत्मा हूँ, देवकुल के संस्कार, देवत्व मेरे अंदर है, वो मेरी आदत है, तो वो आपके पास आ जाएगी, ये छूट जाएगी।
पता जी, ऐसी कई आदतें हैं जिसे व्यक्ति आज ग्रस्त रहता है। जैसे किसी को झूठ बोलने की ही आदत है, किसी को कुछ उठा लेने की आदत है, चोरी कर लेने की आदत है, किसी में ईर्ष्या की आदत है, किसी में बहुत ज्यादा अपमान महसूस करने की आदत है, किसी में खामखा किसी की चुगली आदि करने की आदत है। तो ये बहुत सारी आदतें आज देखने में ऐसी आती हैं जिससे व्यक्ति परेशान भी रहता है और जानता भी है कि ये गलत है, और कई बार उसे अपमानित भी होना पड़ता है लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी इन आदतों से ग्रस्त है। इन सभी आदतों के लिए आप क्या सुझाव?
बिल्कुल, ऐसी और थोड़ी इससे बड़ी भी होती है, जैसा क्रोध करने का संस्कार,
जी जी जी,
अहम में रहने का संस्कार, अपने को ही सत्य सिद्ध करने का संस्कार, रोने रूसने का संस्कार। तो जो पहली चर्चाएं आपने की, बेचुगली करना है, अपमानित फील करते हैं स्वयं को, बुरी बुरी चीजों में, छोटे छोटे बुरे बुरे विचारों में रहते हैं, पहले तो व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि इससे हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव हेल्थ पर, इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे रिलेशनशिप्स पर रहता है। देखिए, जो व्यक्ति चुगली करता है आखिर पता तो चल जाता है सबको, और उसका नाम पता है आपको क्या रख देते हैं, ये चुगलखोर है, ये इधर की बात उधर करे बिना रहेगा नहीं, तो समाज में उसका सम्मान भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। हर व्यक्ति समाज में सम्मानित जीवन जीना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है वो दूसरों को कुछ दे, दूसरों को कुछ सिखाए, टूटे हुए परिवारों को एक करे, बिगड़ी हुई बातों को बना दे, जहां सब कुछ खेल बिगड़ चुका है उसे ठीक कर दे। असली मनुष्य की तो यही पहचान है, इसलिए इन सभी बुरी आदतों से बचना चाहिए। और विशेष रूप से मैं हमेशा कहता हूं, जिसे संसार में कुछ विशेष कार्य करना हो, जिसका संसार में कुछ महान लक्ष्य हो, उसे तो इधर उधर जाना नहीं चाहिए। मैं ये बात सुनाया करता हूँ हमेशा, हमारे सभी दर्शकों ने सुनी है, लेकिन युवा वर्ग को ये बार बार सुननी चाहिए कि चंद्रगुप्त जब युवक था और चाणक्य उसे तैयार कर रहे थे, तो किसी राजकुमारी के मोह में फंसने लगा, अटैचमेंट आने लगा। चाणक्य को पता लगा तो चाणक्य ने उसे सावधान किया। बहुत सुंदर बात है ये, हर मनुष्य के लिए, विशेषकर युवकों के लिए। जब तक लक्ष्य न मिल जाए ये नहीं, लक्ष्य मिलने के बाद करना, अब नहीं। और चंद्रगुप्त समझ गया, क्योंकि अगर वो वहां जाता है तो उसकी सारी शक्तियां उधर लग जाती हैं, और जो उसको एक राज्य प्राप्त करना है, चाणक्य की जो इच्छा है उसे पूर्ण करना है, उस तरफ उसकी शक्तियां जाएंगी नहीं। इसलिए यही बात इन व्यसनों की है। मैं युवकों से कहता हूं, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले युवक ऐसी बुरी आदतों में फंस जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट समय है तुम्हारा, कितने मार्क्स तुम्हारे आते हैं, क्या क्या तुम सीखते हो, कितना तुम अपना मनोबल एकत्रित करते हो, ये तुम्हारे भविष्य पर, तुम IIT में जाते हो, तुम इंजीनियरिंग करते हो, तुम मेडिकल में, तुम MBA के लिए तैयारी करोगे, आजकल तो लॉ प्रारंभ हुआ है, वहीं से कईयों की इच्छा होती है मैं मैजिस्ट्रेट बनूं, जज बनूं, तो एक अच्छा लक्ष्य लेकर जो बच्चे चलते हैं उन्हें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, यही लक्ष्य तक पहुंचने का सुंदर मार्ग होगा।
तो ये वाली जो युवक वाली बात है बेटा जी, कई बार पकड़े तो रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि छूटती नहीं है, हाँ। छूटती नहीं है, तो वहाँ क्या कहेंगे?
वही देखिए, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज इसके लिए बहुत ज्यादा गहरी अवेयरनेस देती है और शक्ति भी देती है उन चीजों को छोड़ने की। यही कारण है कि हमारे यहाँ आने वाले अनेक युवक, कई लाख होंगे, इन चीजों से बचे हैं, बचे रहते हैं, उनको बदबू आती है इन सब चीजों से। तो एक तो अपने देव स्वरूप की स्मृति, हम एक बहुत सुंदर कुल के हैं, हमारा कुल देव कुल रहा है, और अगर हमें ये भी पता नहीं तो हम भारत के हैं, भारत एक महान देश है, हमें भारत को पुनः ऊंचा उठाना है, तो इन सब चीजों का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, केवल एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और जैसे ही अवेयरनेस हो, हम तो भगवान के बच्चे हैं, वो परम पवित्र है, तो हम इन गंदी आदतों में नहीं रह सकते। हमारे परम पिता को कैसा लगेगा जब हम शराब पी रहे होंगे, क्या उसकी दृष्टि हम पे रहेगी? तुमने उसकी श्रेष्ठताओं के, उसका पुत्र हो तुम, उसके अनुकूल कर्म नहीं किए, खान पान नहीं रखा, तो उसकी दृष्टि तुमसे हट गई है। तो ऐसे युवकों को जान लेना चाहिए, वो परमात्म सहयोग से, उसकी कृपा दृष्टि जिसे लोग कहते हैं, उसकी मदद से भी वंचित हो जाएंगे। तो हम भगवान के बच्चे हैं, देव कुल की महान आत्माएं हैं, भारत जो एक महान देश है उसके हम वंशज हैं, उसके हम रहवासी हैं। ये सब याद रखते हुए हम इन व्यसनों से जल्दी छूट सकते हैं।
मतलब एक अवेयरनेस की आवश्यकता होगी, अच्छे राजयोग की आवश्यकता होगी, एक सुंदर लक्ष्य की आवश्यकता होगी। बता जी, मान लीजिए ये चीजें हैं तब तो सहज रूप से छूट जाएंगे और व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कई लोग जो नहीं छोड़ना चाहते, क्या उनके सगे संबंधी, जैसे इस युवक की ही बात ले लें, तो उसके परिवार वाले चाहते थे कि अपनी बुरी लत से छूट जाए या ऐसी बुरी आदतों से छूट जाए, तो क्या दूसरों का भी कुछ सहयोग हो सकता है कि उसके अंदर एक जागृति आ सके या वो बदलने के लिए तैयार हो जाए?
देखिए, समाज में एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि मान लो एक युवक पीने लगा है, अब वो बिजनेस भी करता है, तो लोग उसे कटे कटे तो रहेंगे, लेकिन कुछ उसे अच्छी बात सिखाने वाले लगभग ना के बराबर रहते हैं। जाने दो, इसके पैसे, इसकी कमाई, ये बर्बाद करे, कर लेने दो इसे, इसका बिगड़ेगा सब कुछ। लेकिन विशेष रूप से जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं, उनको इसमें बहुत मदद करनी चाहिए। माताएं अगर ज्ञान योग के मार्ग पर हैं तो उन्हें अपने बच्चों को पवित्र भोजन खिलाना चाहिए और अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए पहले से ही, ये बहुत जरूरी चीज है, कि लोग इस तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, बहुत बहुत जरूरी चीज है। अब माँ बाप में ही कुछ कलह कलेश रहता है, माँ बाप के विचार नहीं मिलते हैं, घर का वातावरण भी भारी रहता है, तो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए आज के समाज में ये बहुत इम्पोर्टेंट और बिल्कुल आवश्यक चीज हो गई है, जिसे हम कहेंगे समय की डिमांड हो गई है, कि अपने घरों के वातावरण को बहुत सुंदर बनाएं, स्पिरिचुअलिटी से भरें, सुख शांति प्रेम खुशी से भरें, ताकि बच्चों में ये बुरी आदतें पनपे ही नहीं।
बिल्कुल, मतलब बचपन से इस चीज पे ध्यान दिया जाए। चलिए बताइए, हमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोग इन आदतों से मुक्त हो जाएं और एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण हो। एक हमारे पास मेल आया ब्रदर जी, ये मोहिंदर सिंह जी हैं, ये कहते हैं ओम शांति भाई जी, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, ज्ञान में हूँ। जब स्कूल मैंने ज्वाइन किया था तो यही संकल्प था कि कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कुछ महीने ऐसे ही हुए, लेकिन मैंने पाया कि प्रैक्टिकल में ऐसा करना संभव नहीं है, बच्चे सर पर चढ़ जाते हैं और बात भी नहीं मानते हैं। लोग भी ये कहने लगते हैं कि कैसे मास्टर जी हैं, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा नटखट हो जाते हैं तो उनपे हाथ उठाना पड़ता है, फिर बाद में संकल्प भी चलते हैं कि बच्चों को नहीं मारना था। आप बताएं कि कृपया ऐसी स्थिति में क्या किया जाए।
कलयुग के अंत के बच्चे हैं तो वो कोई अनुशासित तो होते नहीं है, और फिर बचपन ऐसा ही है जिसमें लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, एक दूसरे से मार
करेंगे,
अगर उनको शांत बैठा दिया जाए तो बोर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे एकदम, उन्हें पता नहीं है इन चीजों का, तो वो थोड़ा शोर शराबा करते हैं। एक तो इस चीज को सीरियसली न लिया जाए, पहली बात तो ये, बच्चे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन जब वो पढ़ाएं, बस इतना बैलेंस करना है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें और जब ये पढ़ाएं तो बच्चे ग्रहण करें। इसके लिए हम जो टीचर्स को कुछ बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं और जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है, वो ये है कि सभी को हर पीरियड में कम से कम दो बार आत्मिक दृष्टि से देखा जाए। ये सब चेतन आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं आई हैं, भले ही उनका शरीर छोटा है, 5 साल 6 साल 8 साल, इससे उनको अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। लक्ष्य ये हो कि टीचर अच्छे वाइब्रेशंस बच्चों को दे। दूसरी प्रैक्टिस, हर पीरियड में अच्छे स्वमान की भी दो बार प्रैक्टिस की जाए। और तीसरा, कम से कम 1 मिनट परमात्मा से योग, ताकि आत्मा से बहुत अच्छी तरंगे पूरी क्लास पर पड़े और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। रही बात बच्चों को मारने पीटने की, धमकाया तो अवश्य जाए, अब मारने पीटने की बात ऐसी है कि अंदर अगर क्रोध की अग्नि जलने लगे और तब किसी बच्चे को मारा जाए, पश्चाताप उसके बाद होगा, लेकिन बहुत लाइटली, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और फिर किसी को सुधारने के लिए एक लगा दिया, तो उससे न तो अपने पर बुरा असर आएगा और न बच्चों पर। बहुत सारे केसेस जैसे राजस्थान में तो होते रहे हैं कि हेडमास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि इतना मार दिया उसने बच्चे को कि उसकी टांग में फ्रैक्चर ही हो गया बेचारे को, एक का तो बहुत बुरा आंख ही खराब हो गई थी एक, तो इसके बाद तो निश्चित रूप से उसे पश्चाताप होगा, वो फिर जेल में चले गए। ये ना हो, अपने क्रोध पर, अपनी इमोशंस पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और जो ये मैंने 3 चीजें अभ्यास की बताई, ये अगर की जाती हैं तो अपने क्रोध पर भी कंट्रोल होगा और बच्चों पर भी सहज कंट्रोल होगा। जैसा हमें बहुत सारे मास्टर सुनाते हैं कि जब वही अभ्यास करते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छे देखे जाते हैं।
बिल्कुल, मतलब ये प्रैक्टिस करके देख लें, इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लोग भी बोलते हैं कि कंट्रोल करो, बहुत शोर शराबा हो रहा है, और हाँ यदि मारने जाते हैं तो खुद की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पता जी, अगला हमारे पास मेल आया है, ये कहते हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा जो बेटा है उसका नाम आवेग है, 16 साल का है, 11th में है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये हालत उसकी घर में है, लेकिन बाहर स्कूल में लोगों के साथ उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए सारे साल तो नहीं पढ़ता, हाँ एग्जाम के समय पढ़ता है, इसीलिए ऐसा होता है कि उसका रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सारे समय कंप्यूटर पे और टीवी पे लगा रहता है, ये हमारे लिए एक सिर दर्द वाली बात है। और एक विशेष बात इन्होंने ये भी लिखी है ब्रता जी, ये कहती हैं कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है तो वो सामने देखता नहीं है कि कौन है, माता पिता है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके मुख में जो आता है वो बोल देता है। मैं थोड़े समय से विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, मैं कहती हूँ कि तू स्वमान की प्रैक्टिस कर, तो वो कहता है कि नहीं, इन सब सारी चीजों पे मुझे विश्वास नहीं है। तो हम कैसे अपने इस बच्चे को ठीक करें ताकि उसकी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक ठीक रहे, घर में भी शांति का माहौल बना रहे। 16 साल का प्रता जी, ऐसी एक कंडीशन है,
ये भी मानसिक बीमारी है वो जबरदस्त, कि घर में क्योंकि वो अधिकार समझता है ना अपने माँ बाप पर, तो चिल्लाता है, वो वहाँ अधिकारी फील करता है अपने को, तो कुछ भी करता है, कुछ बोलता है। और जब वो बाहर जाता है अपने स्कूल में है तो उसे डर भी रहता है, मैं किसी को चिल्लाऊंगा, किसी ने उस पर भी ज्यादा चिल्ला दिया होगा डबल, किसी को उसने मारा उसने 2 मार दिए होंगे, तो वहाँ वो कंट्रोल में हो गया। लेकिन घर में अधिकार समझने के कारण ये बच्चों की स्थिति होती है, और क्रोध तो बहुत बुरा ही है, और क्रोध के साथ जो ये विज्ञान के वरदान हैं, इसने उनको और जरा गड़बड़ में ला दिया है। सारा दिन नेट पे लगा रहेगा, टीवी देखता रहेगा, तो एक तो क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, दूसरा इन सब चीजों से मन विचलित होता है, मन की एकाग्रता नष्ट हो जाती है। चाहे वो गंदी चीजें न भी देखते हो नेट पे, लेकिन टू मेनी इन्फॉर्मेशन ये भी जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये मनुष्य के मन में एक अनोखा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसलिए इस बच्चे के लिए ये सभी चीजें बहुत हानिकारक हैं। अभी रही बात क्या करना चाहिए, माँ ने ज्ञान लिया है, योग सीखा है, तो माँ को पहला कर्तव्य करना है इसको पवित्र भोजन खिलाना, बहुत प्यार भरे अपने भोजन में, बहुत शांति के वाइब्रेशंस डाले भोजन में। बार बार चाहे ये याद करे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और जब भोजन बन जाए या बच्चे को खिलाए तो ये संकल्प करे इस पवित्र भोजन को खाने से इसका चित्त शांत हो जाए। एक ये काम। दूसरा, जब ये सोया हो सवेरे 5 बजे 5:30 बजे तो माँ को चाहिए एक तो इसको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दे 5-7 मिनट। योग जो करते हैं वो जानते हैं अच्छे वाइब्रेशंस कैसे दिए जाते हैं। फिर इसको आत्मा देखकर माइंड टू माइंड इससे बात करे, कुछ संकल्प दे, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें अपने भविष्य को बहुत महान बनाना है, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम्हें पढ़ाई में बहुत होशियार होना है, टॉप करना है। ये इंटरनेट, ये टीवी आदि, ये सब तो बेकार की चीजें हैं, इनसे तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम तो शांत हो, तुम बहुत महान हो, हमारे घर की तुम शोभा हो। इसलिए इस क्रोध को छोड़ दो, रोज सेम टाइम इस तरह के विचार देंगे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तब जगा हुआ है जब वो सोया है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को स्वीकार करेगा और 2-4-5 दिन में जब वो उठेगा तो उसमें ये विचार होंगे और ये विचार उसके व्यवहार में पूरी तरह से चेंज लाएंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, इस बच्चे के लिए इसकी माँ को एक आधा घंटा रोज योग अभ्यास करना चाहिए, संकल्प से कि ये इसके कल्याण के लिए है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इस योग की शक्ति से इस बच्चे का चित्त शांत हो, इसका कल्याण हो, ये पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। ये 3 विधि अपनाने से निश्चित रूप से बच्चे में चेंज आएगी और वो अपने बारे में चिंतन करेगा अच्छा, और होशियार है तो पढ़ेगा अच्छी तरह, तो जब उसके अच्छे नंबर आएंगे तब उसको और आकर्षण होगा, एक रुचि पैदा होगी कि नहीं इसका बहुत महत्व है इन चीजों का नहीं, और उसका भविष्य सुंदर हो जाएगा।
कई बार वैद्य जी, क्या नामों का भी प्रभाव पड़ता है? जैसे इनका नाम आवेग है तो कहीं आवेग नाम से इनके अंदर आवेग आता हो,
आवेग भी आता है, आवेश भी आता है, और ये किसी की सुनता भी नहीं है। नाम का डेफिनेटली जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, इसलिए अभी से यदि इसके माँ बाप इसका नाम चेंज करें, वो साइन करता हो उसके साइन करने के तरीके को चेंज करें, ऐसे बहुत लोग स्पेशलिस्ट आजकल हैं जो ये सब चीज बताते हैं, नाम भी कोई ऐसा रखें, नाम रखने से इसका जीवन बदलेगा। अब देखिए, मान लो इसका नाम खुशहाल रख दिया उदाहरण के रूप से, और माँ इसे रोज 10 बार बुलाते खुशहाल, तो इसे वाइब्रेशन जाएंगे उसको,
उसको भी लगेगा पिटा सा नाम रख दिया।
नहीं, वो तो मैं एक उदाहरण दिया, कोई बहुत अच्छा नाम जिसको सुनते ही उसके अंदर एक अच्छे वाइब्रेशन सॉन्ग
जी।
भले ये कर्मों की गति है कि बचपन में ही जन्म लेते उसका नाम शायद 6ठे दिन रखते हैं
जी, जी।
ये रख दिया आवेग, माँ बाप ने शायद ये सोचा हो अच्छा आवेग रहेगा इसमें, लेकिन कलयुग में
अच्छाइयों का भी तो आवेग हो सकता
है, अच्छे आवेग रहते नहीं, कलयुग के ही आवेग चलते हैं। खैर, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं राय जरूर दूंगा, उसका नाम अगर किसी ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से मिल के बदला जा सके तो इट विल ऑल्सो बी वेरी इफेक्टिव।
कई बार बता जी, लोग अंकों पे बड़ा विश्वास रखते हैं, कई लोग जैसे आपने साइन की बात कही, उस साइन पे विश्वास रखते हैं कि साइन ऐसा ही होना चाहिए, या नाम में जो हम लिखते हैं जितने लेटर्स हैं, कई लोग उन लेटर्स में आगे पीछे या कुछ जोड़ तोड़ कर देते हैं, ऐसा भी सुझाव देते हैं, तो क्या ये भी इफेक्टिव होते हैं?
नहीं, थोड़ा बहुत तो इन चीजों का इफेक्ट होता ही है, भले ही सबसे ज्यादा इफेक्ट मनुष्य के कर्म का ही है, लेकिन फिर भी इन चीजों का कहीं ना कहीं कर्मों पर इफेक्ट आता है
जी,
जिसको लोग भाग्य कहते हैं, सफलता पर इफेक्ट आता है। भविष्य में कोई कुछ करने जा रहा है, उसको कितनी सफलता मिली, उसका कैरियर कैसा बना, उस पर चीजें इफेक्ट अवश्य करती हैं। इसलिए उसमें भी यदि कोई चेंज लाई जा सकती है तो अवश्य ले आना
चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेहतर जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। निश्चित रूप से आवेग अब अच्छी तरह से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ताकि माता पिता को भी इसके लिए चिंता ना हो। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आदत से हमने शुरुआत की थी और सचमुच आज आदतों पे ही बहुत सारी चर्चा हुई है। और कई बार व्यक्ति जब जिन आदतों को लेकर चल रहा होता है तो समझ नहीं पाता कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं, या समझ भी जाता है तो कई बार उसे छोड़ नहीं पाता है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, बहुत ही पहुंचे हुए थे और इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्पीच वो दिया करते थे, तो वो भी इस बात को मानते थे और उन्होंने स्वीकार किया। भ्राता जी भी लगातार कहते हैं उस बात को कि यदि हमें कोई आदत बनानी है तो 21 डेज तक हम बहुत दृढ़ता से इच्छा शक्ति रखते हुए व्रत पूर्वक यदि उस कार्य को 21 डेज कर लेते हैं तो वो अच्छी आदतें हमारी बन जाती हैं। और ठीक यही चीजें आदतों को छोड़ने के ऊपर भी अप्लाई होती हैं कि यदि आप दृढ़ता रखें, जैसे व्रत कोई रखता है कि आज सारे दिन मुझे पानी नहीं पीना है या भोजन नहीं करना है या सारे दिन भगवान की स्तुति करते रहना है, तो सारे दिन वो करता है, कितना भी भूख लगे प्यास लगे उस चीज को ग्रहण नहीं करता। यही दृढ़ता यदि 21 डेज तक किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए कर लिया जाए या अच्छी आदतों को शामिल करने के लिए जीवन में कर लिया जाए, बहुत सुंदर इफेक्ट होता है। बहुतों के ऐसे सुंदर अनुभव हैं, क्यों ना हम भी इस चीज को अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखें, आजमा के देखें। 21 डेज की बात है, पूरी लाइफ तो हमारी अपनी है ही, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन आजमा के देखें। कोई भी आदत छोड़ना या नई आदत अच्छी आदत बनाना ज्यादा कठिन काम नहीं है, केवल आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। बस इतना विचार कर लिया जाए, राजयोग का सुंदर अभ्यास कर लिया जाए, अपने आप को जागृत स्थिति में रखा जाए, सब चीजें सहज और सरल हो जाती हैं। और हम सब जानते हैं बुरे इंसान को लोग किस दृष्टि से देखते हैं, किस रूप में याद करते हैं, वहीं अच्छे इंसान को लोग कितने सम्मान से कितने प्यार से देखते हैं। मैं अपने लिए लोगों की दृष्टि कैसी चाहता हूं, कैसा व्यवहार चाहता हूं, ये मुझ पर है। विचार कीजिएगा और साथ ही अप्लाई भी जरूर कीजिएगा और सुंदर अनुभवों को हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरणी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान।
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।
मुरली मतलब उनका डायरेक्ट माँ वाक्य,
डायरेक्ट
उनको परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान,
परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं, परमात्मा से प्राप्त हुआ ज्ञान नहीं, परमात्मा ही डायरेक्ट दे रहा है।
देखिए हमारे साथ हमारी श्रृंखला मुरली अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल पर।
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
एमसी। सोना किसको कहा जाता है, जागना किसको कहा जाता है? सुनना उसको कहा जाता है, सुनी अनसुनी करना, अच्छी बातें सुनी यहां से, सुनी यहां से निकालती। जागरा किसको कहा जाता है? जो सुनते हैं ना आंख खुलती है, जो जागते हैं ना वो दूसरे जगाने को रह नहीं सकते हैं।
परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते जीवन सबकी करते भव सागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। परम पिता परमात्मा।